पुस्तक सातवीं लेक्चर नंबर 11। ओ
नमः शिवाय।
ओ
नमः शिवाय।
ओ
नमः शिवाय।
ओ
शुद्धात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सीतानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाऊणं नमो अनन्तदीनं अनन्तनाणेन दिष्टसौवर्चम् कम्मपदेश विहत्तिं वोच्चामि नागमं पयदो।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इस पुस्तक के इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो इसमें प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार अपना चल रहा है, छठवीं पुस्तक में भी यही था विषय, सातवीं में भी यही विषय चल रहा है। उसमें हम पृष्ठ संख्या 42 पर आ गए, 42। देखो ये इस पुस्तक का विषय है प्रदेश विभक्ति। प्रदेश विभक्ति का अर्थ क्या है? तो प्रदेश यानी परमाणु की संख्या। जैसे हमने बंध में चार प्रकार देखते हैं, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, तो परमाणु की संख्या को प्रदेश कहते हैं। और प्रदेश विभक्ति का अर्थ होता है परमाणु की संख्या के जो अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्या पाई जाएगी उसमें कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। तो यहाँ तो उत्कृष्ट किसके होता है, जघन्य किसके होता है, उसको तो कहेंगे स्वामित्व। कितने काल तक लगातार उत्कृष्ट रहता है उसको कहेंगे काल, जैसे एक समय तक रह सकता है। और अंतर यानी किसी को पहले अनुत्कृष्ट है, फिर एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ, फिर अनुत्कृष्ट हुआ, तो कहेंगे अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय का है। ऐसे ही जघन्य अजघन्य पर भी घटाया उन्होंने, तो एक जीव की अपेक्षा बात है। अब हम यहाँ विषय जो चल रहा है नाना जीवों की अपेक्षा पहले भंग बताए, उत्कृष्ट वाले कितने भाग प्रमाण है वगैरह वो सब हमने लिया। कभी कभी क्या होता है कि सभी अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं, उत्कृष्ट वाला एक भी नहीं है चारों गति में, फिर बहुत सारे अनुत्कृष्ट वाले हैं और एक है वो उत्कृष्ट वाला है, और कौन तीसरा भंग क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी, बहुत सारे अनुत्कृष्ट है और बहुत उत्कृष्ट है। बहुत हो गए तो फिर भी उनकी संख्या तो अल्प ही होगी, तो उसको हमने फिर भागा भाग में भी देखा। ये तो भंग देखे, फिर भागा भाग में अनंत जीव, अनंत बहुभाग जो है वो तो अनुत्कृष्ट वाले होते हैं, अनंत वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट वाले होते हैं। तो इतना हमने देखा उत्कृष्ट वाले अनंत वे भाग प्रमाण, तो उसके प्रमाण कितना है, संख्या कितना है, तो कहते वो असंख्या है। इस तरह हमने ये सारी बातें देखी थी। अब यहाँ प्रमाण में हम मार्गणाओं में देख रहे थे, ये तो हमने अनंत जीव और अनंत वा भाग प्रमाण वगैरह जो परिमाण उसका प्रमाण कितना है तो असंख्यात है, ये बात तो हमने इन जनरल की सभी जीवों की अपेक्षा से की। अब हर एक गति में अलग अलग गतित कर रहे, नरक गति में क्या है, देव गति में क्या है, मनुष्य गति में क्या है, तिर्यंच गति में क्या है। अब यहाँ हम मनुष्य गति में देखने जा रहे हैं। 42 पृष्ठ पर वो 65 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ से पढ़ेंगे। मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 6 नौ कषायों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं। मनुष्य गति जब कहते हैं तो मनुष्य कितने हैं आपको पता है, मनुष्य कितने हैं, टोटल मनुष्य कितने हैं, मनुष्य की संख्या कितनी है नहीं मालूम। मंजू बहन, हाँ पर्याप्त, जब हम मनुष्य गति कहेंगे तो पर्याप्त पर्याप्त मिलकर तो उनकी संख्या असंख्यात होगी। तो यहाँ कहते हैं उनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों कितने हैं, तो कहते हैं असंख्यात है। अपर्याप्त में भी उत्कृष्ट हो सकता है। हाँ, गुणित कर्मांशिक जो है नरक में से निकला है, तिर्यंच में जन्मेगा, दो तीन भाव करके मनुष्य में आएगा तो उसके उत्कृष्ट कहलाएगा। तो उनकी संख्या असंख्यात है। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, चार संज्वलन और तीन वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो कहते हैं संख्यात है, क्योंकि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट याद है कब होता है? सपना में, जब सम्यक मिथ्यात्व सम्यक रूप से, सम्यक प्रकृति रूप से परिणमित होते हैं, संक्रमित होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट जब मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप होते हैं सपना के काल में, उसके पहले वो गुणित कर्मांशिक की कंडीशन सब लगा लेगा। चार संज्वलन का उत्कृष्ट कहाँ किसका होता है? तो क्रोध, मान, माया, लोग, जब जब वो संक्रमण जो होता है, पुरुष वेद नौ कषाय संक्रमित हो गए क्रोध रूप, तो क्रोध का उत्कृष्ट, क्रोध के सारे मान हो गए, मान के माया रूप, माया के लोभ रूप, तो उसका अपना अपना उत्कृष्ट होगा। बराबर। और तीन वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तीन वेदों की उत्कृष्ट के लिए जो गुणित कर्मांशिक से आया है और उसने मैक्सिमम संचय किया है वेदों के, बांध कर ज्यादा लिए है परमाणु, तीन वेदों के लिए नपुंसक वेद वालों को कहाँ देखा था हमने? ईशान स्वर्ग। स्त्री वेदी वाले के, हाँ, भोग भूमि में पल्ले के असंख्यात भाग में स्त्री वेद को पूर्ण देता है, पूर्ण करता है, वो मैक्सिमम बंद करता है। और पुरुष वेद के लिए पल्ले वाले देव में, पल्ले के आयु वाले देव में, तो वहां से वो आता है, मनुष्य में आएगा तो पहले समय में उसका उत्कृष्ट होगा। परंतु ये सब किस में आएंगे? पर्याप्त मनुष्यों में आएंगे, इसलिए उनको संख्यात कहा। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने? तो असंख्यात है। ये समझ में आया ना डिफरेंस? इसमें सम्यक सम्यक मिथ्यात्व को सपना में वो तो कौन करेगा? पर्याप्त मनुष्य करेगा, इसलिए वो पर्याप्त मनुष्य ही संख्यात होते हैं। तो संख्या सपना करने वाले और उससे कम होंगे, गिने चुने होंगे। तीन वेद का ऐसा है जो गुणित कर्मांशिक जीव है। गुणित कर्मांशिक के बहुत सारे कंडीशंस देखे थे हमने, वो करते करते फिर उसके बाद देवों में उत्पन्न हुआ। कौन सा? नपुंसक वेद के लिए। ईशान स्वर्ग में मैक्सिमम नपुंसक वेद का बंद होता है, तो वहां उसने अधिक से अधिक किया और उसके बाद मनुष्यों में जन्मेगा, तब उसके पहले समय में उत्कृष्ट होगा। नपुंसक वेद को मैक्सिमम करके मनुष्यों में जन्मने वाला जीव लेना। स्त्री वेद का मैक्सिमम कौन करता है? तो भोग भूमि वाला, पल्ले के असंख्यात भाग काल में, वहां से देव की आयु करेगी मिनिमम वाली और फिर मनुष्य में आएगा, क्योंकि बीच में मनुष्य देव की आयु तो होगी ही होगी। और पुरुष वेद के लिए एक पल्ले वाला देवों का भोग, सौदर्भ निशान कोई भी, तो वहां उसने उत्कृष्ट किया और उसके बाद जब मनुष्य में आएगा तो उसके पहले समय में होगा।
ये स्त्री वेद वाला तिर्यंच जीव लेना ना, कि नहीं मनुष्य
पर्याप्त? मनुष्य या तिर्यंच भोग भूमि,
तो वो मनुष्य में भोग भूमि में पल्ले के असंख्यात के बाद में अंतिम समय में हो जाएगा।
हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। उसको फिर देवों में भेजने की क्या आवश्यकता है?
मनुष्य में हो जाएगा,
वहाँ तो मनुष्य ही है ना वो, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल में उसने उत्कृष्ट बना दिया है। अब यहाँ हमें कर्म भूमि के मनुष्य की बात नहीं है, भोग भूमि की बात है। अच्छा है, आप याद दिया। यहाँ पुरुषार्थ की बात नहीं है, भोग भूमि में यहाँ वेदों का बंध होता है तो उसके परमाणु कितने लेता है उसकी बात चल रही है। यानी मनुष्यों में जब हम घटित कर रहे हैं तो भोग भूमि का भी मनुष्य
ले सकते हैं,
वो स्त्रीवेद का अधिक से अधिक बंद कर सकता है, तो वहीं पर उसके पल्ले के असंख्यात भाग के अंतिम समय में उसने उसका उत्कृष्ट किया। बहुत अच्छा। आप जाना नहीं तो ये बातें कौन बताएगा? ये हम देख रहे थे, अनुत्कृष्ट कितने? असंख्यात है। मनुष्य पर्याप्त मनुष्य ने और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में, ये तीन ग्रुप क्यों, कौन से बेसिस पर इनमें समानता क्या है? जय बहन, ये तीन ग्रुप में क्या समानता है? मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य नहीं, हाँ संख्या, वे संख्यात होते हैं और सर्वार सिद्धि के देवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो संख्यात है, क्योंकि वो जीवों की संख्या ही संख्यात है, इसलिए उसमें उत्कृष्ट कहो या अनुत्कृष्ट कहो, हमें उसका नंबर से कुछ नहीं, वो संख्यात है कि असंख्यात है इतना ही देखना था। अब देवगति में देख रहे, देवों में, देवगति में देवों में, यानी इन जनरल सामान्य कथन, तथा स्वधर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में पहली पृथ्वी के समान बंध है। और आनत कल्प से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो संख्यात हैं। देखो यहाँ आनत से लेकर ले लिए हैं, क्योंकि आनत से लेकर वो मनुष्यों में से ही वहां चले जाएंगे। एक्चुअली हृदय उत्कृष्ट की अपेक्षा पांचवें गुण स्थान वाला जाता है, आनत से ऊपर जाता है, परंतु ये पांचवें गुण स्थान वाले जाएंगे, परंतु उत्कृष्ट वाले नहीं जाएंगे। उत्कृष्ट की अपेक्षा लिए ना, उत्कृष्ट में कैसे लगाना है? देखो
गुणित कर्मोचित,
गुणित कर्मोचित चाहिए, और फिर गुणित कर्मोचित जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, या तो समय दृष्टि पांचवें गुण स्थान वाले चाहिए तिर्यंश, या मनुष्य जाएंगे। हमने पहले देखा था वहां जाने वाले जो है वो तो द्रव्य लिंग धारण करने के जाने वाले जीव लिए आनंद से लेकर, हाँ मनुष्य ही होंगे, इसलिए उनको संख्यात कहा। और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो असंख्यात है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए, यही बात विशेषार्थ में बताते हैं। 12वें कल्प तक तिर्यंच भी मरकर उत्पन्न होते हैं,
असंख्यात वहां पे हो गए,
इसलिए यहाँ तक के देवों में पहली पृथ्वी के समान भंग बन जाने से उनके समान जानने की सूचना की है, तथा आगे के देवों में मनुष्य ही मरकर उत्पन्न होते हैं। देखो हमें यहाँ क्या कहते हैं, पांचवें गुणस्थान वाले जाएंगे तो वो कौन है? समय दृष्टि, समय दृष्टि तो गुणश्रेणी निर्जरा भी चल रही उनकी, तो उनका तो गुणित कर्मांशिक से उत्कृष्ट नहीं पाया जाए, अनुत्कृष्ट हो गया उसकी बात नहीं, अनुत्कृष्ट तो असंख्यात है,
तो
गुणित कर्मांशिक रूप से जाने वाले मिथ्यात्व अवस्था में जाने चाहिए, तिर्यंचो तो मिथ्यात्व अवस्था में वहां जाएगी, तो आनत प्राण तारण अच्युत वगैरह वहां पर जाने या ग्रवेक में जाने वाले मनुष्य वो भी मिथ्या दृष्टि कौन से जाएंगे? तो द्रव्य लिंग ही जाएंगे। या द्रव्य श्रावक को भी ले सकते हैं वहां, परंतु यहाँ हमने देखा था पहले बात आई थी, द्रव्य लिंगी को ही वहां ले जाना, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले के लिए ये कंडीशन है।
आनत प्राणत में तो ऐसे मिथ्या दृष्टि भी जाएंगे ना, आनत प्राणत प्राणत आनत
जाते हैं ना, अरे ग्रेवेक तक जाते तो यहाँ तक
नहीं, द्रव्य लिंगी जाएंगे ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है, परंतु ये गुणित कर्मांशिक रूप से आया हुआ है और वहां जाने के लिए खास कंडीशन ये पहले बताया था उन्होंने। आप जरा मुझे वो छठी पुस्तक देना, देवगति में उत्कृष्ट लेना है ना हमको, उत्कृष्ट का भंग कहाँ? 114 पर था, कहाँ था? किसका देख रहे हैं हम?
उत्कृष्ट 28
के 114 114 आदेश में 116 में तिर्यंच देव, देव तो आगे है ना देवों में, हाँ 119 यानी अन्य कर्मों के लिए तो गुणित कर्मोंशिक वाला सातवें नरक से निकला है, किरियंच के दो चार भोग करे फिर देव मिल गया, उसको पहले समय में उत्कृष्ट होगा, मिथ्यात्व 12 कषाय वगैरह वगैरह में। अब हम किसके बात देख रहे थे यहाँ पर, कौन से कषाय के देख रहे हैं, आनत प्राणत, हाँ आनत से लेकर नव ग्रह वेग तक 120 पृष्ठ पर है, नीचे के पैराग्राफ में आनत से लेकर नव ग्रह वेग पर्यंत मिथ्यात्व 16 कषाय 6 नौ कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, गुणित कर्मांश वाला जीव सातवें नरक से निकलकर तिर्यंश के संख्यात भव धारण करके फिर संख्यात वर्ष की संख्यात सॉरी वर्ष पृथकत्व की आयु लेकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि छोटी आयु रखनी है क्योंकि उसको जल्दी वहां ऊपर भेजना है, सबसे जघन्य काल के द्वारा द्रव्यलिंग को धारण करके, द्रव्यलिंग के लिए भी 8 वर्ष की होगी ना कंडीशन, अंतर्मूर्त तक ठहर कर फिर मरण करके अपने अपने देवों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। ये सारी कंडीशन अप्लाई होने के लिए, अन्य जीव जाते हैं कि नहीं जाते वो प्रश्न नहीं है, सम्य दृष्टि जाएंगे तो उनके तो गुणश्रेणी निर्जरा होगी, वो जाएंगे
कम हो जाएंगे
तो उनके प्रदेश होंगे ना, परमाणु की संख्या कम हो जाएगी, फिर जाएंगे ना उनके, इसलिए मनुष्य ही जाएंगे, मनुष्य जाएंगे तो उनकी संख्या संख्या तो होगी, क्योंकि उसके लिए सभी कंडीशन चाहिए, गुणित कर्मांशिक भी चाहिए, दो चार भोग करके छोटी आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ है, अभी छोटी आयु में तो 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूर्त इतनी आयु से ही जन्मा है, और वो तो द्रव्यलिंग धारण करेगा और अंतर्मूर्त में मरकर वहां चला जाएगा। इसलिए आनंद से लेकर अपराजित तक चीज ली है, मैंने नीचे तो द्रव्यलिंग और
सातवें ग्रह तक
ऊपर उनके लिए जो उत्कृष्ट है, अपराजित तक लिए ना वहां तो समय दृष्टि है सारे,
अच्छा, पे
पर उनके लिए जो उत्कृष्ट है यथा योग्या, यानी यहाँ आए भावलिंग धारण किए वो अर्लीस्ट वहां चले गए, वैसे जो अनुत्कृष्ट वाले कितने हैं तो असंख्यात हैं, देवों की बात चल रही है तो अनुत्कृष्ट के लिए तो देवों की संख्या ऐसे भी असंख्यात है। इस प्रकार अनाहारक मार्गना तक ले जाना चाहिए, विशेषार्थ, हाँ विशेषार्थ पढ़ रहे थे हम, 12वें कल्प तक तिर्यंच भी मरकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहां तक के देवों में पहली पृथ्वी के समान भंग बन जाने से उनके समान जानने की सूचना की है, मैंने वहां असंख्यात भी हो गए, तथा आगे के देवों में मनुष्य ही मरकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिमाण संख्यात प्राप्त होने से वहां उक्त प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। जयबेन ख्याल में बात, आनंद से लेकर अपराजित तक मनुष्य ही जाएंगे वहां पर, कंडीशन क्या है, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले की बात है, इसलिए नहीं तो आप कहेंगे आनंद में आनंद प्राणत में तो तिरंज भी जाते हैं 16वें स्वर्ग तक, उनकी बात यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 5वें गुणस्थान वाले जाएंगे और उनके तो गुणित कर्मांशिकपना नहीं रहता वहां पर, हमें तो गुणित कर्मांशिक के साथ अधिक से अधिक प्रदेश के साथ जाना चाहिए, ऐसा जो लेना है। अब ये उत्कृष्ट की बात हमने देखी, अब जघन्य की बात करें, जघन्य का प्रकरण है, जघन्य का प्रकरण का अर्थ क्या है, जघन्य प्रदेश विभक्ति, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही, पहले हमने एक जीव की अपेक्षा हम देख चुके हैं, अब नाना जीवों की अपेक्षा ने कौन से कितना प्रमाण है, प्रमाण अनुगम चल रहा है ना, परिमाण अनुगम चल रहा है अपना, पहले तो हमने भागा भाग देखा था, कितने भाग प्रमाण है इतना ही देखा था, जैसे उत्कृष्ट वाले कहते हैं अनंत विभाग है और बहुभाग है, अनंत बहुभाग प्रमाण है अनुत्कृष्ट का। यहाँ जघन्य वाले अनंत विभाग प्रमाण है और अजघन्य बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि जघन्य कब होता है? अपनी अपनी क्षपणा के, सामान्य कथन तो ऐसा होगा ना, अपनी अपनी क्षपणा के क्षपणा में होगा, अंतिम समय है कि नहीं वो तो भूल जाओगा, क्योंकि हर एक के अलग अलग जगह उसका जघन्य होगा। तो जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से 26 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? कितने कह दिया? संख्या, क्योंकि ये तो क्षपणा करने वाले हैं ना, सम्यक सम्यक प्रकृति को अलग निकाला, 26 यानी 28 में से दो को अलग निकाला, क्योंकि उसका दीर्घ उद्वेलना काल में उसका तो जघन्य होता है, वो तो किसी भी गति में हो सकता है, क्षपित कर्मोषित विधि से आया है वगैरह, बाकी कंडीशंस उसके लिए लगाना है, और फिर दीर्घ उद्वेलना काल के बाद उसने उद्वेलना। अब यहाँ अन्य 26 प्रकृतियों के किसका होगा? तो क्षपणा करने वाले। और जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो अनंत हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है।
सम्यक मिथ्यात्व में तो उद्वेलना वाला जीव लेना पड़ेगा ना,
सभी उद्वेलना वाले नहीं लेने ना,
जो क्षपित
कर्मांशिक चाहिए। एक बार देखो, कल हमने देखा था ना, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की दीर्घ उद्वेलना काल में लिया था, क्षपित कर्मांशिक से आके लास्ट में था 388 9। देखो हमने क्या देखा था, क्षपित कर्मांशिक चाहिए, क्षपित कर्मांशिक के लिए जितनी कंडीशन है वो सब उसने फुलफिल की। एक इंद्रिय में बहुत काल रहा, फिर त्रस में आया, संयम बहुत काल, बहुत बार धारण किया, सम्यक तो भी बहुत बार है, परंतु यहाँ तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी बहुत बार की, संयम भी बहुत बार धारण किया, संयम भी बहुत बार धारण किया, चार बार कषायों को उपशमाया, फिर एक इंद्रिय में चला गया। पेज नंबर 387 है, छठे भाग में, यानी वो क्षपित कर्मांशिक की कंडीशंस वहां बता रहे हैं, शुरू में ही है। वहां तो मिथ्यात्व का किसके होता है वो पूछा था, तो जिसको मिथ्यात्व का जघन्य होगा उस मिथ्यात्व में से ही अभी सम्यक को प्राप्त करेगा, तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य होगा, वही जीव आगे चलकर उद्वेलना करेगा तो उसका जघन्य हो जाएगा। देखो तीसरी लाइन में, चार बार कषायों के उपशम कर एक इंद्रिय में चला गया, सेकंड लाइन में लास्ट में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल के द्वारा उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों की निर्जरा कर, उपशम आया था ना तभी वहां जो कुछ पड़े थे निषेक वगैरह, तो फिर उसको भी एक इंद्रिय में निर्जरा की। देखो एक इंद्रियों में भी निर्जरा होती है क्योंकि वहां भी स्थिति कांड घात वगैरह होते हैं। फिर त्रसों में आया, दो 66 सागर काल तक सम्यक्त्व का पालन किया, तब एक 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 निषेक उसका और खिल गया, और बाद में दर्शनमुखी क्षपणा वाले को लेना है मिथ्यात्व के बारे में, परंतु हमें सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व को घटित करना है, तो क्षपणा किए बिना दो तीन लाइन नीचे देखो, ऊपर से सातवीं लाइन में, इसी जीव को, इसी जीव के मिथ्यात्व को प्राप्त होकर, अभी वो 66 सागर है, दो बार 66 सागर है ना, उसके लास्ट में क्षपणा करने के बदले वो मिथ्यात्व में चला गया और दीर्घ उद्वेलना काल में उसने उद्वेलना की,
दो समय वाली स्थिति।
तो दीर्घ उद्वेलना कर जब सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की दो समय काल वाली एक स्थिति शेष रहती है। ये दो समय वाली एक स्थिति क्यों रहती है?
उदय मिथ्यात्व का है,
उदय मिथ्यात्व का है, इसलिए जिसका उदय है तो उदय रूप वर्तमान में है, उसका एक निषेक नीचे पड़ा है, और जिसका उदय नहीं वो एक समय ऊपर पड़ा है, तो उसकी वो जो अंतिम जो है उद्वेलना करते करते एक निषेक बाकी रहा, तो एक निषेक बाकी रहा उसकी पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर पर है वो, जब नीचे फर्स्ट नंबर पर आएगा तो मिथ्या स्वरूप हो जाएगा। तो जब सेकंड नंबर पर है उसकी दो समय वाली एक स्थिति ने एक निषेक बाकी है, तब उसका जगन्य में जगन्य द्रव्य है, उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। ऐसे जीव कितने हो गए तो संख्यात हो गए, अकेले मनुष्य में भी नहीं लेना है, क्योंकि दो छासर सागर उसने कहाँ बिताए, देव मनुष्य में, देव मनुष्य। उसके बाद मिथ्यात्व तो में आया है, और पल्ले के असंख्यात भाग काल तक दीर्घ उद्वेलना चल रही है, तो ये किसी भी पर्याय में जा सकता है, मिथ्यात्व तो में, पल्ले का असंख्यात भाग काल एक इंद्रिय में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो किसी भी जीव समास में किसी भी गति में हम इसको घटित कर सकते हैं, चारों गतियों में ये घटित होगा, क्योंकि वो जहां कहीं हो मिथ्यात्व अवस्था में तो कहीं भी जा सकता है, परंतु उसकी जो कंडीशंस है सारी, क्षपित होना चाहिए, इतने दो बार छासर सागर काल तक देना चाहिए, फिर इतना दीर्घ उद्वेलना चाहिए, कम काल में उद्वेलना पूरी हो गई, या जरूरी नहीं सभी उद्वेलना करेंगे, क्योंकि इतनी बार जिसने पाया है सम्यक वगैरह वगैरह, तो उसमें से कितने जीव तो मोक्ष चले जाएंगे, तो इतने लंबे काल तक रहने वाला कोई संख्या थी जीव हो गए, ये बात बताना चाहते हैं। अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अजघन्य वाले कितने हो गए, असंख्यात हो गए, तो अनंत हो गए असंख्यात, क्योंकि उनकी सत्ता वाले जीव असंख्यात ही होते हैं। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, इसी प्रकार क्यों लिखा
तिर्यंच पे,
क्योंकि ऊपर जो कही थी ना जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले अजघन्य वाले कितने, तो अनंत है, तो अनंत संख्या मात्र तिर्यंच गति में ही घटित होगी, अन्य तीन गति वाले तो जीव असंख्यात ही है। विशेषार्थ 26 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपणा के समय यथायोग्य स्थान में होती है, ये यथायोग्य शब्द डाल दिया, क्यों संज्वलन लोक की कहाँ होती है, आदव प्रवृत्तकरण के अंतिम समय, जिसने चार बार उपसमाया नहीं है ऐसा जीव लेना है, और बाकी कंडीशन क्षपित की रखना, इसलिए यथा योग्य रखा, बाकी में भी क्षपणा। तो अभी हमने मिथ्यात्व के बारे में देखा, मिथ्यात्व का जघन्य कब है, क्षपित कर्मोशिक से आया है, और फिर समय तो प्राप्त किया दो छासर सागर तक रहा, फिर अंत में जाके क्षपणा, तो क्षपणा के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होगा,
दो समय वाली
एक स्थिति, यानी जब स्थिति कांडक पूरे हो जाएंगे, एक उच्चिष्टावली रहेगी, एक एक निषेक संक्रमित होगा, और जब एक निषेक बाकी रहेगा तब उसका जगन्य होगा, ख्याल में आती बात। इसलिए यथायोग्य अपने अपने हर एक प्रकृति के अपने अपने स्थान पर यथायोग्य का, अनंतानुबंधी के बारे में वो विसंजना का अंतिम समय, उसमें भी ऐसा लेना,
क्षपित
कर्मोशिक से आया है,
अंतर्मूर तक बंद किया और पीछे 132 साल तक,
पहले उसने सम्यक को प्राप्त किया था, विसंजना भी की थी, फिर मिथ्या तो में गया,
वापस
संयोजना हुई ना, अंतर्मूर्त तक बंद किया और फिर सम्यक को प्राप्त किया, फिर 266 सागर काल तक सम्यक में रहा, और लास्ट में जाके विसंजना, तो अंतिम समय में उसका जगन्य होगा, इसलिए यथायोग्य स्थान कह दिया। यतः इनकी क्षपणा करने वाले जीव संख्यात होते हैं, मनुष्य ही संख्यात है, और इनकी क्षपणा करने वाले और भी उससे भी थोड़े जीव हैं। देखो तो दर्शन मोह की हो या चारित्र मोह की, क्षपणा करने वाले जीव कितने होते हैं अधिक से अधिक
संख्या, अधिक से अधिक संख्या के होते हैं,
6 महीने में 600
एक साथ,
एक समय में तो कितने कम हो गए, और उसमें ये कंडीशन लगाओ तो वहाँ तो 108 भी नहीं घटित होगा, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक चाहिए, वो सब अंतिम समय वाला चाहिए, सभी कंडीशंस लगा लो उसके। अतः इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिमाण संख्यात कहा है, इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव अनंत होते हैं, यह स्पष्ट ही है। उन जीवों के अलावा बाकी सारे जो है वो
अनंत,
अजघन्य वाले वो अनंत है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाली विभक्ति अन्य विशेषताओं के रहते हुए अपनी अपनी उद्वेलना के अंतिम समय में होती है। अन्य विशेषता अभी हमने देखी ना,
क्षपित कर्म,
पहले क्षपित कर्मांशिक चाहिए,
पहले का संख्या तो विभाजन
सही है, और फिर सम्यक को प्राप्त करके 266 सागर तक, 266 सागर,
श्रेणी चढ़ के
फिर मिथ्या तो
श्रेणी चढ़ के
दीर्घ उद्वेलना, श्रेणी चढ़ना वो पहले क्षपित में सब आ गए, 266 के बाद दीर्घ उद्वेलना थी उसमें, तो अंतिम समय उद्वेलना का अंतिम समय। यतः ये जीव भी संख्याती होते हैं, अतः इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिमाण संख्यात कहा है, इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव असंख्यात होते हैं, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले लेना है, तो सत्ता वाले जीव कौन कौन से हैं, चारों गति में, सम्य दृष्टि के मिथ्या दृष्टि है,
मिथ्या दृष्टि भी है, सम्य
सम्य दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, सादी यानी जिसकी उद्वेलना पूरी नहीं हुई है, ऐसे मिथ्या दृष्टि, सत्ता वाले देखना है ना, उद्वेलना पूरी हुई तो उनके पास सत्ता ही नहीं है, तो जिनके सत्ता है उद्वेलना चल रही है ऐसे मिथ्या दृष्टि, और समय दृष्टि में किसको लेना,
सपना नहीं किए वो
औपशमिक और सौक्षमिक को लेना। सामान्य से तिर्यंच अनंत होते हैं, मिल गए ना कहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए उनमें यह ओघ प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें ओघ के समान जानने की सूचना की है, मात्र उनमें स्वामित्व का विचार कर परिमाण घटित करना चाहिए। स्वामित्व का विचार क्यों करना, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक है, यहाँ तो कोई क्षपणा की अपेक्षा से जघन्य नहीं होता है, तो बाकी क्षपित कर्मांशिक की विधि से आया है और तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है ऐसा ले सकते हैं, या फिर क्षपित कर्मांशिक की विधि आया, विधि से आया है, तिर्यंच में आया, फिर वो मिथ्यात्व के बारे में करना है तो समय को प्राप्त किया, लंबे काल तक रहा समय दृष्टि, फिर अंत समय में, इस तरह से घटित कर सकते हैं सोच कर। अब आदेश से ने अभी हम यहाँ बताएंगे, अलग अलग गतियों में बताएंगे, पहले नारकियों में 28 प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं, तो कहते संख्यात है, और जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं, असंख्यात है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में चाहिए, देवों देवों हुआ है, देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार सिद्धि के देवों में सब प्रकृतियों के सब पद वाले जीव कितने हैं, तो संख्या तो ये तो आसान है ना, क्योंकि उनकी संख्या ही कम है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए, यानी हर एक मार्गणा में सोच कर हमको उसका हाँ सब प्रकृतियों के सब पद वाले जीव कितने हैं तो संख्यात है, ये जीव ही संख्यात है। सब पद यानी जगन्य अजगन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सब ले लें, कितने हैं तो कहेंगे संख्यात। विशेषार्थ सामान्य नारकियों से लेकर पूर्वोक्त सब मार्गनाओं में संख्यात जीव ही सब प्रकृतियों की जगन्य प्रदेश विभक्ति करते हैं। इसलिए सर्वत्र 28 प्रकृतियों की जगन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिमाण संख्यात कहा है, तथा मनुष्य पर्याप्त आदि तीन मार्गणाओं का परिमाण संख्यात है और शेष का असंख्यात है। इसलिए इनमें अपने अपने परिमाण के अनुसार 28 प्रकृतियों की अजगन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिमाण कहा है। ये तो आसान है, समझ नहीं, बात ख्याल में आई है कि नहीं आई? मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीय और सर्वार्थ सिद्धि वाले कितने हैं?
संख्यात
है। तो जहाँ संख्यात ही है तो हम उत्कृष्ट होकर भी कितने हो गए? संख्यात। अनुत्कृष्ट भी संख्यात।
क्या पे जो ये विकलेंद्री और बादर एकेंद्रीय को छोड़ा है वो भी असंख्यात होते हैं और हाँ। वहाँ पे भी जगन्य विभक्ति वाले
वो तीरियंच में आ गए ना?
नहीं, अच्छा ऊपर तीरियंच का
वो तीरियंच गति में बताएंगे, अभी नर गति की बात चल रही है, आदेश में ले रहे हैं अभी हम, अभी नरक गति की बात उन्होंने बताई। और ऐसा ही कहाँ कहाँ घटित होता है, पंचेंद्रिय तीन मनुष्य वगैरह। इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ, यानी वहां हम घटित कर सकते हैं हरि में। विकलेंद्रिय जो है वो इंद्रिय मार्गणा में आएंगे, इसलिए यहाँ उसका अलग से निर्देश नहीं किया। गति मार्गणा में तो तीर्यंच गति के कितने भेद है, एक तो सामान्य तीर्यंच, एक पंचेंद्रिय तीर्यंच यानी सामान्य
योनिमति,
पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिमति और पंचेंद्रिय तीर्यंच लब्धिय पर्याप्त। गति मार्गणा में तो इतने ही उसके भेद हो गए। अब आप विकलेंद्रिय की बात करेंगे वो इंद्रिय मार्गणा में चले जाए, फिर वहाँ एकेंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रियों का कथन अलग अलग होगा। फिर काय मार्गणा में तो हम पांच स्थावर कायिक और एक त्रस्त कायिक, उसकी बात अलग अलग करेंगे। तो जहाँ जो अपेक्षा लगती है वैसे हम उसका कथन करेंगे। जैसे काय मार्गणा में त्रसों में सब क्षपणा वाले हो गए तो उसका उनकी अपेक्षा वहां जघन्य घटित होगा, और जो स्थावर कायों में उनके जघन्य किसके, तो क्षपित कर्मांशिक रूप से वहां जो गया है उसके ले लेंगे। यहाँ तो सभी मार्गणाओं की बात नहीं बताई है, वो तो हमें बताया है घटित करके देखो। अब 44 पृष्ठ पर आते हैं। क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है, ये जो सारे अभी हमारे अधिकार चल रहे हैं वो अनेक जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा इन जीवों का क्षेत्र कितना है, तो जब कितना है पूछते हैं तो पूरे लोक के कितने भाग प्रमाण है इतना कहना है। तो उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव ही थोड़े कम होते हैं, तो कितने भाग में रहेंगे तो असंख्यात,
तो
इतना ही इसमें आता है। तो क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उत्कृष्ट का अर्थ उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है, कहते लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का कितना होगा, पूरा लोक। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि असंख्यात ही जीव इसकी सत्ता वाले हैं, उत्कृष्ट वाले उसमें भी और कम है, तो कितना क्षेत्र व्यापेंगे लोक का असंख्यात। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, अकेले तिर्यंचों में ही क्यों, इसी प्रकार कहा पूरा लोक तिर्यंचों की अपेक्षा ही घटित होता है। विशेषार्थ 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति संगी पंचेंद्रिय जीव करते हैं और उनका क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। जैसे हमने देखा था ना मिथ्यात्व की कौन करता है, सभी 16 कषायों की कौन करता है, तो गुणित कर्मांशिक वाला सातवें नरक के अंतिम समय। तो ऐसे जीव कितने गिने चुने हो गए और सातवें नरक में रहने वाले वो लोक का असंख्यात भाग होगा। इसलिए यहाँ बराबर करना, यह रहा हुआ है, यहाँ ओग से उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे क्या करना बराबर। असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है, ये बात ख्याल में आई? हाँ मंजू बहन, देखो ये उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसको होती है, तो उन्होंने बोला वो संगी पंचेंद्रिय में होती है, ये सातवें नरक में जो गुणित कर्मांशिक करता है। तो ऐसे जीव कितने हैं और कितने कितना क्षेत्र व्यापेंगे वो, तो लोक का असंख्यात भाग। और बाकी अनुत्कृष्ट वाले पूरे लोक में हैं, तो पूरे लोक को व्यापते हैं। देखो विशेषाक की तीसरी लाइन लास्ट में, इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति उक्त प्रकृतियों की सत्ता वाले शेष सब जीवों के संभव है। जिनके जिनके उनकी सत्ता है, उत्कृष्ट वाले छोड़ दो तो बाकी सभी में अनुत्कृष्ट होगा और उनका क्षेत्र सर्वलोक है, क्योंकि हमने देखा ना एक केंद्रीय पूरे लोक में है। इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र कहा है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, क्योंकि उसके सत्ता वाले जीव ही है असंख्यात, और वो कितना क्षेत्र व्यापेंगे तो लोक का असंख्यात जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। सामान्य तिर्यंचों में यह क्षेत्र घटित हो जाने से उनमें ओह के समान जानने की सूचना की है। अब आदेश में बताएंगे, नारकियों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। यह स्पर्शन कहाँ आया बीच में, यानी उनका वर्तमान का क्षेत्र को यहाँ स्पर्श किया है कह दिया। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जाना चाहिए, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं, सभी मनुष्यों का क्षेत्र कितना है, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट सबको मिलाया हमने, पर्याप्त और अपर्याप्त
यानी
ढाई द्वीप है, तो ढाई द्वीप ये पूरे लोक का कितवा भाग है, तो असंख्यात भाग है। देवों का कितना भाग है, तो असंख्यात भाग है, और उसमें भी उत्कृष्ट वाले लिए ना ये सब, अनुत्कृष्ट को भी उसमें लिया। देव कितने भाग में रहते, असंख्यात भाग में। नारकी कितने भाग में रहते, असंख्यात भाग में। पंचेंद्रिय तिर्यंच कितने भाग में रहते, असंख्यात भाग। क्योंकि एकेंद्रिय उनको लेंगे तो पूरे लोक में कहेंगे। विशेषार्थ, पूर्वोक्त सामान्य नारकी आदि उक्त मार्गणाओं का क्षेत्र ही लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। मार्गणा का क्षेत्र यानी नारकियों का क्षेत्र कितना है, तो लोक का असंख्यात भाग। अपने अपने मिलों में रहते हैं वहाँ, और क्षेत्र की बात है ना, वर्तमान की बात चल रही है। जब स्पर्शन की बात आएगी तो हम वो मारणांतिक वगैरह सबका विचार करेंगे। अतीत काल में जहाँ जहाँ जो जीव वहाँ पर उसके आत्म प्रदेश फैले उन सबकी बात करेंगे। अब तो क्षेत्र में मात्र वर्तमान काल की बात करें। इसलिए इनमें सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार विचार कर क्षेत्र गठित किया जा सकता है। इसलिए उन मार्गणाओं में उक्त क्षेत्र के समान जानने की सूचना की है। मैं पूछूंगी अनाहारक आहार मार्गना में आहारक जीवन ने कितना क्षेत्र व्यापा है?
पूरा लोक।
हाँ, लोक का संख्या का बात आप क्या कहते हैं? आहारक जीवन ने कितना क्षेत्र व्यापा है? पूरा लोक। आहारक किसको कहना?
पर्याप्त।
जो विग्रह गति को छोड़ो, बाकी सारे आ रहे अभी चौथे वाले को छोड़ दो, बाकी सब आहारक ही है। पहले गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक सभी आहारक हैं। एक से वो विग्रह गति वाला कारमान का योग छोड़ दो, तो उनमें अनुत्कृष्ट या उत्कृष्ट का क्षेत्र कितना होगा? उत्कृष्ट उसमें कम हो गए बहुत,
वो तो लोक का संख्या
तो उसमें लोक का संख्या तो अनुत्कृष्ट पूरा लोक होगा। अब अनाहारक लोगों केवल अनाहारक जीवों ने कितना क्षेत्र व्यापा है? मात्र
अनाहारक लोग अनंत जीव की अपेक्षा।
क्यों उन्होंने बताया? इसलिए अश्विन भाई की तरफ मत देखो। हाँ हाँ वो कब होगा अनाहारक? कब हो गए वो? विग्रह गति में अनाहारक हो गए। तो विग्रह गति करने वाले कितने जीव है एट ए टाइम? अनंत है कि असंख्यात है?
अनंत
नक्की। सबको ले लो ना,
अनंत ही है ना?
अनंत है। सारा ट्रैफिक जाम कहीं नहीं होता है, सब मरकर कहीं ना कहीं जाने में लगे। कारमान का योग वाले विग्रह गति वाले जीव अनंत है। अकेले निगोद को ही ले लो ना, निगोद में जाने वाले सब वो मरकर जाने वाले। हाँ, तो पूरा लोक में व्याप्त है वो, तो पूरा लोक होगा। परंतु उसमें उत्कृष्ट वाले कितने हो गए? तो वो
असंख्यात।
इस तरह से हर एक मार्गना में सोचना। एक विशेषार्थ पूर्वोक्त तो ये पढ़ा था, और नीचे का विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। जघन्य हो गया,
जघन्य का प्रकरण,
जघन्य का प्रकरण है। हाँ, विशेषार्थ भी हो गया। निर्देश जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है। निर्देश का अर्थ क्या है? कथन। ओह और आदेश। ओह यानी इन जनरल सेट में, आदेश यानी एक एक मार्गना में बताए। देखो गुणस्थान को ओह कहते हैं, और क्या नाम है गुणस्थानों को? सामान्य और संक्षेप। सामान्य, संक्षेप, ओह और गुणस्थान एक अर्थवाची। और मार्गणा के लिए
विशेष।
हाँ, यहाँ एक रही है ना,
आदेश,
आदेश है, विस्तार है, विशेष है और मार्गणा। ये मार्गणा के नाम। ओग से सब प्रकृतियों की, जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के समान है। यानी जघन्य वाले लोग का असंख्यात भाग और अजघन्य वाले पूरा लोग, फिर वो गति में घटित कर देना। इसी प्रकार सब मार्गणाओं में ले जाना चाहिए। चाहिए हुआ चाहिए। विशेषार्थ सर्वत्र सब प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति के स्वामित्व को देखने से विदित होता है। इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के समान बन जाता है। किसमें समानता है? संख्या में। ये संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है, इसी में केवल उसकी समानता है। हाँ, स्वामित्व में कोई समानता नहीं, इसलिए उसे उनके समान जानने की सूचना की है। ये तो क्षेत्रानुगम हो गया। अब स्पर्शन कह रहे हैं। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या फर्क है आपको पता है? जय में क्षेत्र किसके कहना और स्पर्शन किसको कहना? नहीं है तो हम देखेंगे ना। हाँ, वर्तमान के क्षेत्र को क्षेत्र कहेंगे, कितना क्षेत्र व्यापा है, और स्पर्शन में वर्तमान का तो बताएंगे ही बताएंगे, और भूत भविष्य भी, भविष्य की तो ठीक है बात, भूत जो घटित होता है वही भविष्य में घटित होगा, तो उसमें क्या क्या अपेक्षा लगती है, तो उनका रहने का ठिकाना कितना है। भूतकाल में उस मार्गणा वाले जीवों ने, भूतकाल में जब देवगति की बात करेंगे, नाना ही जीव, ये सारी बातें नाना जीवों में ही घटित होती है। अभी नरक की बात करेंगे तो नरक का वर्तमान क्षेत्र का लोक का असंख्यात अभाव है, परंतु नरक में मारणांतिक करने वाले, मारणांतिक नारकी जो मारणांतिक करते हैं मध्य लोक में,
और मध्य लोक
वो नारकी कहलाएंगे ना, जब मारणांतिक किया है तब तो उनके आत्म प्रदेश नरक से लेकर मध्य लोक तक फैले हैं, तो पूरे नरक अपने अपने नरक से जितने राजु क्षेत्र है वो पूरा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी नरक से कभी ना कभी कोई जीव आया है, या नरक में जाने वालों के उपवाद की अपेक्षा लेना, नरक में जाने वाले तो नारकी जीव में घटित करना है, ऐसे हर एक मार्गणा में हम घटित कर, यानी उसमें मारणांतिक करके कहाँ जा सकते हैं, देवों में विहार करके कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो पूरा उसमें हम क्षेत्र ले लेंगे। जैसे मिथ्या दृष्टि नीचे के देव मारणांतिक करके आठवीं पृथ्वी में जाएंगे, तो वहां तक के पूरा क्षेत्र कैलकुलेट करना है, वो स्पर्शन में आएगा। बात ख्याल में आई जावे, उसमें रहने का क्षेत्र, विहार करके जाने का क्षेत्र, समुदाय देने मारणांतिक की अपेक्षा, सब उसमें एप्लीकेबल होगा। तो स्पर्शन दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवन में कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवन ने सर्वलोक का स्पर्शन किया है, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। क्योंकि उत्कृष्ट वाले देख रहे हैं ना, पुनित कर्मांशिक से आया है और जल्दी से जल्दी क्षपणा की है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग, त्रस नाली के कुछ कम 8/14 भाग, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में बताया, और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। देखो तीनों ही बात लिए, अनुत्कृष्ट वाले ने लोक का असंख्यात भाग, वर्तमान की बात बताई, क्योंकि इनकी सत्ता वाले जीव कितने हैं तो असंख्यात है, कौन कौन सी पर्याय में है ये जीव, चारों गति में, सभी जीव समासों में सत्ता वाले लेने उद्वेलना भी कर रहे होंगे कोई, फिर भी उनकी संख्या असंख्यात ही है, इसलिए लोक का असंख्यात भाग, ये वर्तमान का। त्रस नाली के कुछ कम 8/14 भाग, ये बाकी तो तीन गति में अपनी अपनी जगह है वो, परंतु देव विहार करके जाते हैं, इसलिए कुछ कम 8/14 भाग त्रस नाली का विहार की अपेक्षा, क्यों, नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं, तो दो राजू नीचे और ऊपर गमन 6 राजू तक होता है, तो 8/14 राजू में से त्रस नाली के 14 में से 8 राजू, ख्याल में आई बात। मारणांतिक की अपेक्षा ले लेंगे तो मारणांतिक की अपेक्षा तो पूरा लोक हो जाएगा, नौ राजू इसलिए नहीं लिया, मारणांतिक लगाना है आपको तो मारणांतिक तो पूरा लोक में हो सकता है, अगर मात्र देवों की बात करनी होती तो हमने नौ राजू नहीं लेते, तो नौ राजू पूरे लोक में आ गए ना, क्योंकि मारणांतिक लगाने तो सब पर लगाओ, विहार मात्र देवों में ही उसकी मुख्यता से होती है, इसलिए देवों को लगाया, और मारणांतिक में तो सभी जीव कर रहे हैं। एक इंद्रियों में भी जो सत्ता वाले जीव है पूरे लोक में पड़े, और मारणांतिक करके पूरे लोक में कहीं भी जा सकते हैं, तो मारणांतिक की अपेक्षा पूरा लोक होगा उनका। और ये हम अतीत काल की अपेक्षा अनंत हो जाते हैं ना जी, वर्तमान में भले असंख्यात है परंतु अनादि से कोई ना कोई करते आए हैं, उसकी अपेक्षा लेनी है विशेषार्थ। सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के स्वामित्व को देखने से विदित होता है कि उनका स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग से अधिक संभव नहीं है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति एकेंद्रिय आदि जीवों के भी संभव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण कहा है। वो तो क्षेत्र में भी सर्वलोक आए तो स्पर्शन में तो आएगा ही। तथा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग कहा है, क्योंकि ये जीव पल्ले के असंख्यात विभाग से अधिक नहीं होते। सत्ता वाले जीवन की बात है ना, अनुत्कृष्ट वाले, इसलिए इनका वर्तमान स्पर्शन उक्त क्षेत्र प्रमाण ही प्राप्त होता है। तथा देवों के विहारवत स्वस्थान आदि की अपेक्षा, ये आदि में क्या क्या लेना है, जब स्पर्शन देखते हैं तो स्पर्शन में कौन कौन सी बातें कंसीडर करनी पड़ती है। सात प्रकार के समुद्र और ये विहार व स्वस्थान वगैरह सब लेना, यानी उसमें कैसे स्वस्थान स्वस्थान यानी उनका अपना रहने का ठिकाना, विहार व स्वस्थान है जहाँ तक विहार करके जा सकते हैं वो विहार व स्वस्थान। देखो एक होती है विक्रिया से जाना और एक होता है विहार से जाना, देवों में तो दोनों पॉसिबल है, विहार व स्वस्थान। फिर सात प्रकार के समुद्र जहाँ जो पॉसिबल है उसकी बात करते हैं। यहाँ तो केवली को नहीं लेना है, मोहनी की सत्ता वाले हैं, परंतु हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो उसमें सब है। और एक हो गया उपपाद, सात समुद्र, एक स्वस्थान स्वस्थान, एक विहार व स्वस्थान और एक उपपाद, सात और वो समुद्र में आ गए सब। सात प्रकार हमने इकट्ठा ले लिए, समुद्र में सभी कुछ आ गया, यानी इन 10 की अपेक्षा ये 10 पद जो है जहाँ जो एप्लीकेबल है उसको वहाँ लगा, जहाँ जो एप्लीकेबल है क्या अर्थ क्या है, मार्गणाओं में सभी जगह वो नहीं एप्लीकेबल होगी, ख्याल में आती बात। जैसे अशुभ लेशा लेनी है कृष्ण नील वगैरह, तो उसमें वो आहारक समुद्रात होगा कि नहीं होगा,
नहीं।
तेजस समुद्रात होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, वो तो पीत पद्म वालों को होगा। इस तरह से लगाना है इसको। यहाँ क्या कहते हैं, देवों के विहार व स्वस्थान आदि की अपेक्षा यह स्पर्शन त्रसनाले के कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण, और मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा, ये मारणांतिक और उपपाद हमें सभी जीवों पर लगाना है, क्योंकि हम यहाँ ओग से देख रहे हैं आदेश से नहीं। यदि देवों में अकेले मारगणा मारणांतिक लगाते तो आपका जो कहना था 9/14 वो लगा लो। अब यहाँ सभी जीवों को लेना है तो मारणांतिक पूरे लोक में होगा। आगे बढ़े, हाँ जय भाई, समझ में आती है बात। देखो अभी आदेश से नारकियों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और त्रसनाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये 6/14 कैसा हुआ, त्रस नाली के कुछ कम 6/14। हाँ लक्ष्मी बेन, कौन से नारकी का 6 राजू तक कौन से नारकी पाए जाएंगे? 6 राजू? हाँ 6 राजू क्यों लिया, 7 राजू क्यों नहीं लिए? पहला छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, 6 राजू ही क्यों लिए, 7 राजू क्यों नहीं लिए? हाँ सातवीं पृथ्वी, सातवीं सातवां नरक कहाँ है? सातवीं पृथ्वी कहाँ है? सातवें नरक सातवीं पृथ्वी में है। वो सातवीं पृथ्वी कहाँ पर है, कितने नीचे है,
कितना डिस्टेंस? 7 राजू के जास्ती है सब पूछ रहे
हैं। देखो ये पहली पृथ्वी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और नीचे वो एक राजू प्रमाण हो तो निगोद कलकल भूमि सब है। तो ये सातवीं जो है पृथ्वी, इसका डिस्टेंस कितना है? 6 राजू। तो नारकी कितने उसमें बारंदी भी करेंगे तो 6 राजू तक ही करेंगे, ये बात पूछना चाहते हैं। क्योंकि दूसरी पृथ्वी और ये एक राजू तक है। पहली पृथ्वी तो लाख योजन और एक लाख
कम 6 राजू का 80,000 योजन
में ये पहली होती है, बीच में अंतराल है और एक राजू डिस्टेंस पर दूसरी पृथ्वी है। फिर नीचे की एक एक राजू नीचे नीचे ले, तो 6 राजू पर सातवीं पृथ्वी है, इसलिए इसका मारणांति करेंगे तो यहाँ तक आएगा, या उपपाल भी करके जाएंगे तो वहां तक। मारणांतिक अर्थ यहाँ नारकी है। अब मरकर कहाँ जाने वाले हैं? सातवें नरक का है तो तिर्यंच होगा, तो मध्य लोक में आएगा, तो मरण के पहले उसके आत्म प्रदेश पहले हुए, ये मारणांतिक हुआ। उपपाद में यहाँ का जीव मर गया, यहाँ के जीव का मारणांतिक नहीं लेना
ना?
वो मनुष्य गति में चला जाएगा या तिर्यंच गति में कहेंगे हम, तिर्यंच गति वाला यहाँ तक मारणांतिक करेगा इस डायरेक्शन में, और नारकी मारणांतिक ऐसा करेगा। तिर्यंच करेगा मारणांतिक तो पूरे लोक में कहीं नहीं जा सकता है मनुष्य और तिर्यंच। ख्याल में आई बात? उपपाद यानी ये मर गया, मर गया भी, यहाँ मर गया, देह छूटा और पहला समय उसने यहाँ तक ट्रेवल किया, ये उसका पहला समय, यानी नीचे जाने की जो उसके एक दंड जो उसका होगा, या पहला समय ऐसा भी लेंगे कोई यहाँ पर है उसने पहले ऐसा एक समय के लिए ऐसा गया और फिर दूसरे समय में नीचे आया, तो उसके आत्म प्रदेश यहाँ है नहीं। अतीत काल को ले रहे हम, वर्तमान में अगर लेना है तो कोई भी अपना नरक छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है, तो बहुत छोटे स्पेस में है वहाँ, ये बीच के असंख्यात योजनों के जो अंतराल है उसमें कोई नारकी नहीं है। वो कब हो गए, उपपाद में या मारणांतिक में हो गए? क्योंकि उनके नारकी जीव ही कहेंगे हम उनको, विग्रह गति में उनको हम नारकी कहेंगे, मारणांतिक में भी हम उनको नारकी कहेंगे जब वो मरण कर यानी मारणांतिक करके मध्य लोक में उन्होंने जो उनके प्रदेश फैले हैं। इसलिए यहाँ क्या कहते देखो, नारकियों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल थोड़े हैं जीव। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक का असंख्यात भाग, ये वर्तमान का, और त्रस नाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। यहाँ मारणांतिक और उपपाद लगाना, इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए। ये 6/14 सातवीं में ही घटित होता है, अलग अलग पृथ्वी वो जितनी नीचे है वहां से हम गिनेंगे उसको। पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान भंग है, यानी लोक का असंख्यात भाग, क्यों पहली पृथ्वी कितनी है नीचे है? 1,80,000, वो तो लोक का असंख्यात भाग है, लोक के सामने कुछ नहीं है। दूसरी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नारकियों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। उत्कृष्ट वाले जो है लोक का असंख्यात अभाव, और अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीवन में लोक के असंख्यात विभाग, त्रस नाली के कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, एक कुछ कम एक किसके लिए, दूसरी पृथ्वी, कुछ कम दो तीसरी पृथ्वी के लिए। एक क्यों कम किया थोड़ा आपको पता है? देखो किसी भी पृथ्वी में नार की, अभी ये छोटी पृथ्वी हुई, अब ये पृथ्वी है और इसमें नरक के बिल कैसे हो गए, ये बीच बीच में होगी ना, ये नरक के बिल है। तो नीचे की पृथ्वी की ये जो यहाँ मोटाई है यहाँ टच नहीं करते, इससे ऊपर हजार योजन छोड़कर यहाँ उसके बिल है, इसलिए कुछ कम कहा, क्योंकि यहाँ के नार की समुदाय करेंगे कि तो ऊपर करेंगे, नीचे कोई जाएगा ना, नीचे की पृथ्वी में कोई समुद्र करके जाएगा कि नहीं, अकेले होगा कि नहीं होगा, तीरियंचे होगा, अकेले होगा कि नहीं होगा, एक पंचेंद्र ही होता है, यानी नीचे जाने का सवाल नहीं है, और ऊपर को कोई मरकर आता है तो यहीं तक ठहरेगा ना, नीचे क्यों जाएगा वो, इसलिए नीचे के हजार योजन जो मोटाई है वो कुछ कम में आ गई, हर एक में ऐसा ही, नीचे तल को कोई स्पर्शता नहीं है, भी इन बिटवीन ही ऐसा है, पृथ्वी की मान लेते हैं ऐसी पृथ्वी की मोटाई है तो नीचे तो एकदम नीचे तक है ना, उसके जितने कोई पलड़े है नरक के, प्रत्येक नरक के अलग अलग जो कुछ लेयर्स है मंजिले, तो उसी पाथड़े जिसको कहेंगे वो पृथ्वी की जो मोटाई है उसके इन बिटवीन ही होते हैं अलग अलग लेवल पर, सबसे नीचे का जो पाथड़ा है वो तल से ऊपर हजार योजन ऊपर, ये हमने भूगोल में देखा है ना, एक एक पृथ्वी की मोटाई कितनी है वो सब देखा था, नीचे नीचे वो पतली पतली होती चली जाती है।
यहाँ पे ये जो बताया ना छठी पृथ्वी तक के नारकियों में 28 प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान वो पहले समय होता है।
हाँ।
तो ये उत्पाद
नहीं, नहीं, नहीं उत्कृष्ट की बात चल रही है।
हाँ उत्कृष्ट कभी
उत्कृष्ट वाले वहाँ उत्पन्न हुए हैं
पहले समय ही होगा, तो ये पहले समय वाले जीव तो उत्पाद की अपेक्षा भी ले सकते हैं हम लोग,
परंतु अभी वो कौन से है कितने क्षेत्र से जाएंगे वहाँ पर वो लिमिटेड है ना, वो कम है जीव।
हाँ। अच्छा वो जीव कम है,
वो जीव कम है इसलिए संख्या होगी वो। और अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग, त्रस नाली के कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पांच बटे 14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। विशेषा यहाँ जिस नरक का जो स्पर्शन है उसे ध्यान में रखकर सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का अतीत स्पर्शन कहा है, शेष कथन स्पष्ट ही है। अब तिर्यंच गति में लगाएंगे, तिर्यंच गति में तिर्यंचों में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। उत्कृष्ट वाले हैं ना, कैसे लेना, गुणित कर्मांशिक जो नरक से निकल कर आया तो संगी पंचेंद्रियों में आएगा,
मध्य भक्ति
भोग भूमि में जाएगा कि नहीं,
नहीं।
कर्म भूमि का वो हिंस शाप होगा, तो वो लोक का असंख्या का भाग का। अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीवन ने सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, और अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग ये वर्तमान के, और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है ये भूतकाल की अपेक्षा,
मारना की करो
भूतकाल में सब। सब पंचेंद्रिय तिरियंचों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पंचेंद्रियों में है क्योंकि वो मारणांतिक करके पूरे लोक में जाएंगे। इसी प्रकार सब मनुष्यों में जानना चाहिए। विशेषार्थ, तिरियंच समस्त लोक में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का वर्तमान और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण कहा है। मात्र सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो जीव ही असंख्यात है। इसलिए इनकी उक्त प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण, क्योंकि वर्तमान में एट अ टाइम तो असंख्यात ही जीव है, परंतु अनादि से अगर हम देखेंगे तो अनंत जीवों ने उसकी सत्ता पाई थी और वो लोग के किसी न किसी क्षेत्र में स्थित थे एकेंद्रियादि अवस्था में। सम्यक्त्व द्विक यानी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, उसकी अपेक्षा कही गई विशेषता सब पंचेन्द्रिय तिरियंचों में 28 प्रकृतियों की अपेक्षा भी बन जाती है। ऊपर बताया था ना वो उत्कृष्ट वाले कितने हैं, तो लोग का असंख्यात भाग कहते हैं। तो कहते हैं 28 की अगर अपेक्षा लगाएंगे सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के समान मारणांतिक वगैरह सब लगाएंगे हम, तो वहाँ पर भी बन जाती है। इसलिए उनमें सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण कहा है। सब मनुष्यों में भी यही व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें सब पंचेंद्रिय तिरियंचों के समान जानने की सूचना की है। शेष कथन सुगम है। ये बात ख्याल में आती है, क्षेत्र में वर्तमान का क्षेत्र वहाँ जीवों की संख्या से गुणित करना। देखो जीवों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगाहना, उसको हम क्षेत्र कहें। फिर जो कहीं विहार करके जाते हैं मारणांतिक करके उपपात करते तो उसमें हम उसको लगा लेते हैं। अब देवगति में देवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, लोक का असंख्या का भाव। क्यों? यानी वो गुणित कर्मांशित से आए हैं और फिर दो चार भोग करके देवों में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जीव लेना है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग, ये उनका वर्तमान का रहने का जगह तथा त्रसनाली के कुछ कम 8 विहार की अपेक्षा और कुछ कम 9/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। ये 9/14 कैसे होता है प्रतिभाते? तो 9 कैसा घटित हुआ? 9 राजू कैसा हुआ? 14 में से 9 राजू लिए ना यहाँ पर। तीन क्या नीचे? नीचे देखो विहार करके नीचे कहाँ तक जाते? तीसरी पृथ्वी तक, तीसरे नरक तक जाते। तो नीचे 2 राजू आए, अब कोई नीचे आया है और वहीं से उसके मरण है, वहाँ पर मारणांतिक कर दिया। तो कहाँ जा सकता है? एक इंद्रिय में जा सकता है ना, पृथ्वी का एक में। कहाँ का पृथ्वी का एक हो सकता है? 8वीं पृथ्वी का, सिद्धशिला का। सिद्धशिला में भेजना है ना? तो कहाँ तक वो मारणांतिक किया उसने? 2 राजू नीचे गया था, वहां से 7 राजू ऊपर तक उसने मारणांतिक किया, तो 9 राजू हो गया उसका। हाँ, तीसरी पृथ्वी में ही तीसरा नरक है, पृथ्वी ही कहते हैं उसको। 2 राजू नीचे है, 2 राजू नीचे है, तीसरा नरक। हाँ, तीसरा नरक कहो, तीसरी पृथ्वी कहो, ये पहली और दूसरी पृथ्वी एक राज्य में आ गई। तीसरी पृथ्वी दो राज्यों, चौथी पृथ्वी तीन राज्यों, पांचवी चार राज्यों, छठी छह राज्य, पांच राज्यों, सातवीं छह राज्यों। तो इसको नरक कहो या पृथ्वी कहो की बात है। हाँ, राज्य में हम कहेंगे तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं, दो राज्य नीचे गए हैं और वहां से सात मध्यलोक से सात राज्य ऊपर आठवीं पृथ्वी में उन्होंने मारणांतिक किया है। तो यहाँ से नीचे मारणांतिक करने को क्या है, तो पूरा ही ले लो ना। कुछ लोग नीचे नीचे की सातवीं पृथ्वी में मारणांतिक करेंगे और कुछ लोग ऊपर की आठवीं पृथ्वी में मारणांतिक करेंगे, तो पूरे 14 राज्य घटित हो सकेंगे कि नहीं? नीचे क्यों नहीं भेजा उनको? एक इंद्रिय में तो जाते हैं। हम देव की बात कर रहे हैं, देव यहाँ दूसरी पृथ्वी में, तीसरी पृथ्वी में आए। वो मारणांतिक करके जाने की बात है, मरकर जाने की बात है, मरकर जाने की बात है। नरक में कहाँ उत्पन्न करना है, यहाँ के पृथ्वी का एक में उत्पन्न कराना है। नरक में कहाँ उत्पन्न कर रहे हैं हम, पृथ्वी का एक में बराबर विहार यहाँ किया, अब उसमें सात आठवीं पृथ्वी का एक का जीव हो रहा है अभी, ईशत प्रागभार, वहां तक मारणांतिक किया। क्यों? क्योंकि वहां का एकेंद्रीय हो रहा है। वैसे यह नीचे की चौथी पृथ्वी, पांचवी छठी सातवीं पृथ्वी में उसने मारणांतिक करके क्यों नहीं किया उसने, ये मेरा प्रश्न है। एकेंद्रीय नहीं होते तो पृथ्वी कैसे होगी वहां पर? नारकी नहीं बनाना है, एकेंद्रीय बनाना है। ये सारे क्यों नहीं होते? एक इंद्रिय पूरे लोक में होते हैं। यहाँ वायु कायिक भी है, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, सब कुछ कायिक है, सूक्ष्म भी है और बादर भी है। अरे संकलेश नहीं होते तो एक इंद्रिय में क्यों जाते हैं? बिना संकलेश के एक इंद्रिय में थोड़ी जन्म लेते हैं। ये मरकर जाएंगे ना तो भी पहली और दूसरी पृथ्वी या सात आठवीं पृथ्वी, इसके बिना अन्य पृथ्वियों में नहीं उत्पन्न होते। ये नियम है, देव मरकर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न हो गए, देव मरकर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो या तो पहली पृथ्वी के पृथ्वी कायिक हो गए, या दूसरी पृथ्वी के पृथ्वी कायिक हो गए, या आठवीं पृथ्वी के पृथ्वी कायिक हो गए। नीचे के पृथ्वी के पृथ्वी कायिक नहीं होते, पृथ्वी कायिकों की बात चल रही है, नारकी की नहीं। हाँ, देव नारकी नहीं होते, वो तो सर्वश्रुत है। वनस्पति भी इसी पृथ्वी के आधार से वनस्पति होगी ना, नीचे वो जाते ही नहीं है। देव कहाँ मरकर कहाँ एक इंद्रिय में उत्पन्न होने वाले देव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? हाँ, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति, प्रोवाइडेड वो बादर होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, इसमें उत्पन्न होते हैं। और ये ऊपर ही उत्पन्न होंगे, नीचे के पृथ्वियों में जाएंगे ही नहीं, ये नियम है।
कंसेशन फॉर द डे,
ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ही सब जाएंगे दे, यहाँ भी होंगे, यहाँ के भी पृथ्वी का एक होंगे। यहाँ के पृथ्वी का एक क्यों, ज्योतिषी विमान जो है पृथ्वी का एक, वहाँ के पृथ्वी का एक कहीं भी हो सकते हैं ना, ऊपर का ऊपर जा सकते हैं, नीचे उसके नीचे नहीं। दूसरी पृथ्वी के नीचे के पृथ्वी का एक केंद्र कोई नहीं होते, इसलिए उनको ऊपर ही गिना उनको, नहीं तो पूरे 14 राज्य गिनते ना। ये 9/14 क्षेत्र का। इसी प्रकार सौधर्म ऐशान कल्प में जानना चाहिए, ये सौधर्म ऐशान तक ही क्यों लिया ऐसा? हाँ प्रतिभा, जो देवों में घटित किया वो सौधर्म ईशान में भी ऐसा ही घटित करते हैं। महेंद्र को क्यों छोड़ दी? ऊपर नहीं जाते, नीचे जाते, वहां तक है। सौधर में ईशान तक कहाँ जाते हैं? एक इंद्रिय में जाने वाले सौधर में ईशान तक के ही जीव एक इंद्रिय में जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जाएंगे नहीं। ऑफकोर्स सांसाधन में भी कहा है, अभी वो अपेक्षा यहाँ नहीं ली मैंने। क्या कहा मैंने?
सौधर्म ईशान वाले एक इंद्रिय में,
बहुनत्रिक और सौधर्म ईशान, इन्हीं के एक इंद्रिय संबंधी बंद हो सकता है, ऊपर के जीवों को बंद ही नहीं होता। सनत कुमार, महेंद्र आदि, वो कितना भी संकलेश होगा तो वो संगी पंचेंद्रिय में ही आएंगे, वो एक इंद्रिय में जाएंगे। अब भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्या का, क्योंकि उत्कृष्ट है ना, गुणित कर्मांशिक से आया है और तिरंज में दो चार भव करके देवों में उत्पन्न हुआ है। स्पर्शन
लोक का
नहीं, बाद में तो अनुत्कृष्ट ही होता है, पहले ही समय में लेना है, एक समय में लेना है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये उनका अपना रहने का ठिकाना वर्तमान का, त्रसनाली के कुछ कम 3.5, ये कुछ कम 3.5 कैसे होगा बताना है आपको? जय भी हाँ, 2 राजू नीचे,
डेढ़ राजू
और ऊपर, डेढ़ राजू क्यों, कहाँ तक? हाँ, सौधर्म ईशान के वो दंड तक, ध्वजा दंड तक। हाँ, क्यों? नियम है। और आगे क्या लिखा है देखो, आगे कुछ कम 8 भी लिख रही है। आगे क्या लिखा है? अच्छा, कुछ 3.5 और 8, ऐसा दो ऐसा अलग क्यों लिखा? हाँ, 9 बटे भी आएगा, वो तो मारणांतिक में आएगा। विहार की अपेक्षा 2 विकल्प बताए, 3.5 भी बताया और 8 भी बताया, बोलो।
कोई देवान को ऊपर लेके जाएगा?
देखो, स्वयं गमन करते हैं तो सौधर्म ईशान तक ही जा सकते हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, और कोई अन्य वहां के देव उनको ले जाएंगे, पर के साथ जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक ऊपर जा सकते हैं, यानी 6 राज्यों तक ऊपर जाएंगे। हा? तो वहाँ 8 राज्य लिए
ऊपर के देव लेके।
हाँ, पहचान वाले ले जाएंगे, यानी उनका स्वयं गमन करने की शक्ति नहीं है, पर हम पर के साथ हो जा सकते हैं। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी असंख्यात भाग। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग, ये वर्तमान का, त्रसनाली के कुछ कम 8/14 प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, यानी बिहार की अपेक्षा। नीचे 2 राज्य जाते हैं 3रे नरक तक और ऊपर 6 राज्य। अब ये इन एक इंद्रियों में नहीं जाते, इसलिए 9/14 नहीं कहा। एक इंद्रिय योग्य, यानी ये नियम ही है यहाँ का कि उनके तो एक इंद्रिय का बंद ही नहीं होता। ये हो गया ना, आनंद कल्प से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और त्रसनाली के कुछ कम 6/14 प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। अब यहाँ 6/14 कहा? लक्ष्मी बहन क्यों कहा ऐसा? हाँ, कहाँ तक करते हैं? मध्य लोक तक ही विहार करते हैं, नरकों में नहीं गमन करते। ये गमन शक्ति नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, वो नीचे नहीं जाएंगे, आनत प्राणत आरण अच्छुत वाले नीचे नहीं जाएंगे। आगे क्षेत्र के समान भंग है। हाँ? नहीं, वो यहाँ तक जाएंगे ना, सहस्रार तक के लोग जाएंगे, जीव जाएंगे, मात्र असुर कुमार रहते ही नीचे, उनकी बात कहाँ है। ये भवनत्रिक भी जाते हैं, सौधर्म ईशान भी जाते हैं, सहस्रार तक के जाते हैं, 13वें 14वें 15वें 16वें नहीं जाते। वो तो मध्य लोक तक तो आ सकते हैं, ग्रेवेज तो वो अपनी जगह छोड़ेगी नहीं, वो तो नीचे आएंगे। इस प्रकार अनाहरक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। ये विशेषार्थ के 2 लाइन पढ़ते हैं। यहाँ सर्वत्र अपने अपने वर्तमान आदि स्पर्शन को ध्यान में रखकर, वर्तमान क्षेत्र को वर्तमान स्पर्शन भी कहेंगे, सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन कहा है, शेष कथन सुगम है। ये जो भूतकाल में स्पर्शन उन्होंने घटित किया है वो अनुत्कृष्ट वालों में घटित किया है खासकर। नहीं रुकते अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्त कनमो सदा देत होलो। अश्विन
नमो अरियंताणं नमो सिद्धानं नमो आजानं नमो वज्जानं नमो लोये सप्वसानं।